दिन भर 20 मार्च दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदर। योगी आदित्यनाथ सरकार का आज पहला दिन, मंत्रालयों की घोषणा अभी तक नहीं। जानेंगे कैबिनेट की संरचना क्या कहती है नई सरकार के बारे में।
जो योगी जी का एलिवेशन है, इट इज सीन एज इफ एक और राजपूत लीडर को यूपी में एक तरह से डेवलप करने का काम हो रहा है, एज अगेंस्ट राजनाथ सिंह जी।
देखेंगे कश्मीर की राजनीतिक कश्मकश का क्या असर पड़ा है वहाँ की कला और संस्कृति पर।
हिप हॉप एक प्रोटेस्ट का ऐसा जरिया है जहाँ पे उनकी नीयत ये नहीं है कि उनका गाना कितना अच्छा है, उनकी नीयत ये है कि उनकी कहानियाँ जो हैं, लोगों की कहानियाँ जो हैं, लोगों का इतिहास और हिस्ट्री जो है वो एक वाइडर ऑडियंस तक पहुँचे।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कार्यभार संभालने के बाद आज प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। मुख्यमंत्री योगी ने सरकारी अधिकारियों से 15 दिन के अंदर अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि लोगों की सुरक्षा प्रदेश सरकार की प्राथमिकता होगी, अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्रिटेन सरकार ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने की प्रक्रिया शुरू करने की तारीख तय कर दी है। प्रधानमंत्री टेरेजा मे के प्रवक्ता ने बताया कि वो इसे लेकर बने अनुच्छेद 50 को लागू करने की शुरुआत 29 मार्च को करेंगी। ब्रिटेन ने बीते साल हुए जनमत संग्रह के बाद यूरोपीय यूनियन से अलग होने का फैसला किया था। ब्रिटेन के पास अलग होने की शर्तों पर बातचीत के लिए 2 साल का वक्त होगा। यूरोपीय यूनियन के 27 सदस्य देश हैं। ब्रिटेन यूनियन से अलग होने वाला पहला देश है। यूरोपीय कमीशन का कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। सीरिया से मिली रिपोर्टों के मुताबिक सरकार के समर्थन वाली सेना ने राजधानी दमिश्क के पूर्वी हिस्से में 30 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। दमिश्क पर कल विद्रोहियों ने अचानक हमला कर दिया था। जोबाज जिले में विद्रोहियों ने खुफिया सुरंग का इस्तेमाल कर हमला किया था। 2 साल में पहली बार विद्रोही पुराने शहर के करीब तक पहुंच गए। सरकारी सेना का कहना है कि उन्होंने विद्रोहियों के कब्जे से सभी इलाके वापस ले लिए हैं। सीरिया पर नजर रखने वाले बर्मिंगम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्कॉट लुकॉस ने हमले के कारणों पर बात करते हुए कहा, हमले का शुरुआती उद्देश्य संघर्षग्रस्त इलाकों को जोबार से संपर्क जोड़ना था। दूसरा, सरकार को उपनगरीय इलाके से अपनी सेना हटाने और राजधानी को सुरक्षित करने के बारे में सोचने के लिए मजबूर करना था। तीसरी बात यह है कि उन्हें बड़ी मनोवैज्ञानिक चोट देना इसका मकसद था। ये थे प्रोफेसर स्कॉट लुकॉस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने सरकार की आर्थिक नीति की आलोचना की है। इसे लेकर राष्ट्रपति हसन रूहानी पर मई में होने वाले चुनाव के पहले दबाव बढ़ गया है। खामनेई ने ईरानी नववर्ष के मौके पर अपने संदेश में कहा कि वो गरीब लोगों के दर्द को महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक दिक्कतों को लेकर सरकार के प्रयास उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे हैं। दक्षिण कोरिया ने विश्व व्यापार संगठन के सामने अपनी व्यापारिक गतिविधि को लेकर चीन के रुख पर चिंता जाहिर की है। दक्षिण कोरिया ने जब से अमेरिका का मिसाइल रोधी डिफेंस सिस्टम लगाने पर सहमति जताई है, तब से चीन के पर्यटकों के दक्षिण कोरिया जाने पर रोक लगा दी गई है। लोटे कंपनी की चीनी शाखाओं में से ज्यादातर को बंद कर दिया गया है। लोटे कंपनी ने दक्षिण कोरिया के अधिकारियों को डिफेंस सिस्टम लगाने के लिए जमीन मुहैया कराई थी। चीन का कहना है कि डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल चीन की निगरानी के लिए हो सकता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ख्वा चुनयांग ने कहा कि चीन ने बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा, हमने इस मामले पर हालिया दिनों में कई बार अपनी राय जाहिर की है। हम चीन और दक्षिण कोरिया के बीच सामान्य आदान प्रदान का समर्थन करते हैं। संक्षेप में कहें तो हम चीन और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापारिक गतिविधियों का समर्थन करते हैं, लेकिन सब जानते हैं ये जनता की राय के अनुकूल होना चाहिए। उधर रक्षा प्रणाली लगाने को लेकर चीन का विरोध बिल्कुल स्पष्ट है। ये थे चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते साल हुए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अपने प्रचार अभियान में रूस के साथ साठगांठ के आरोपों को खारिज किया है। FBI के डायरेक्टर जेम्स कोमी रूस के दखल को लेकर कांग्रेस के सामने सबूत रखने वाले हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। उत्तर प्रदेश सरकार का कामकाज संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ का आज पहला दिन था मुख्यमंत्री के रूप में। पहले दिन आदित्यनाथ ने प्रधान सचिवों और अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। सभी अधिकारियों को योगी ने खड़े होकर शपथ दिलाई। आगे के रोड मैप के बारे में भी उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की, लेकिन शपथ लेने के 24 घंटे बाद तक मंत्रियों के विभागों की घोषणा अब तक नहीं की गई है। आइए सीधे चलते हैं लखनऊ बीबीसी संवाददाता सलमान रावी के पास। सलमान, बताएं आज क्या क्या कार्यक्रम रहा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का।
रेहान साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं राजभवन के बाहर हूं और जैसा भी आपने कहा कि सुबह से मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियोज एलोकेट करने की बात थी, जो जिसका इंतजार था सारे जितने शपथ लिए जिन मंत्रियों ने उनको, लेकिन सुबह से अभी तक जो है वो हो नहीं पाए। लेकिन अभी राजभवन में अंदर सारे ये मंत्री मौजूद हैं। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो लिस्ट गवर्नर को अप्रूव करा ली जाए और उसके बाद कोई घोषणा की जाए, लेकिन अभी तक काफी समर्थक भी खड़े हुए हैं यहाँ पर मंत्रियों के बाहर में राजभवन के, लेकिन कोई घोषणा नहीं हो पाई है। उम्मीद की जा रही है कि आज देर रात तक हो जाएगी। और जहां तक बात है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की, तो सुबह सुबह उन्होंने डीजीपी को, जावेद अहमद को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया, जो चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के उनको बुलाया, और बहुजन समाज पार्टी के जो नेता की हत्या हुई है इलाहाबाद में उसको लेकर उन्होंने चर्चा की और 15 दिन का समय दिया कि ब्लूप्रिंट उस पर तैयार किया जाए, कानून व्यवस्था कैसे उत्तर प्रदेश में दुरुस्त की जाएगी। इसके अलावा बैठकों का सिलसिला रहा दिन भर, वो शपथ जैसे आपने कहा दिलाई गई, लेकिन आज साथ साथ ये भी था कि मुख्यमंत्री अपने जो सरकारी आवास है उसमें शिफ्ट करेंगे, तो उसको लेकर यहाँ पर काफी तैयारियां थी। पुरोहितों ने पूजा भी की और घर को सजाया भी गया, लेकिन शायद वो मुहूर्त बन नहीं पाया जिसकी वजह से वो आज जो है उसमें शिफ्ट नहीं कर पाए।
इलाहाबाद से कुछ बूचड़खानों को बंद करने की खबरें आ रही हैं।
देखिए, इसको लेकर भी काफी गहमा गहमी थी आज काफी यहाँ पर, लेकिन ये है कि पूछा जब पत्रकारों ने डिप्टी सीएम मौर्य साहब से कि साहब ये जो खबरें आ रही हैं इलाहाबाद से, तो क्या इस पे फैसला हो गया है, तो उन्होंने कहा था कि पहले आपको जैसे याद होगा कि बीजेपी ने कहा था कि सरकार बनाते ही 24 घंटों में अवैध बूचड़खाने जो है बंद करा दिए जाएंगे, लेकिन मौर्य साहब का कहना था कि पहली कैबिनेट की बैठक के बाद ये फैसला लिया जाएगा और ये जो दो बूचड़खानों की जिनकी बात की जा रही है ये अवैध बताए जा रहे हैं, जैसा कि यहाँ सरकारी अधिकारियों से मेरी बात हो रही थी, तो लेकिन कोई इस पर फैसला सरकार का भी नहीं हुआ है। ये पहली बैठक जो होगी कैबिनेट की, डिप्टी सीएम ने ये साफ कर दिया है कि उसमें ही ये फैसला किया जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका सलमान रावी लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ से ज्यादा है। प्रदेश में 75 जिले हैं और 403 विधानसभा सीटें। इतने बड़े प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के अलावा 22 कैबिनेट मंत्री और 22 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। कैबिनेट की संरचना प्रदेश की नई सरकार के बारे में क्या कहती है? विनीत खरे की रिपोर्ट।
पत्रकारों से पूछे कि भाजपा उत्तर प्रदेश में कैसे जीती, तो उनमें से कई कहेंगे कि सोशल इंजीनियरिंग का कमाल था। इनकी माने तो मंत्रिमंडल पर भी सोशल इंजीनियरिंग की छाप साफ दिखती है। नई कैबिनेट में ओबीसी, ठाकुर, ब्राह्मण, दलित, कायस्थ, वैश, जाट और मुसलमान सभी को जगह मिली है। लखनऊ में अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की संपादक सुनीता आरन।
जो चीफ मिनिस्टर इज अ ठाकुर एंड जो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो एक मौर्य है। मौर्य एक बहुत ही प्रोमिनेंट बैकवर्ड कास्ट है और एक ब्राह्मण है दिनेश शर्मा जी। सो जो सोशल इंजीनियरिंग ने इनको हेल्प करा टू विन द इलेक्शन, वही सोशल इंजीनियरिंग मैनिफेस्ट कर रही है ये कैबिनेट।
योगी आदित्यनाथ की टीम में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन के बेटे आशुतोष और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह मंत्री बने, लेकिन राजनाथ सिंह के बेटे पंकज को जगह नहीं मिली। क्या कांग्रेस पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाने वाली भाजपा खुद भाई भतीजावाद नहीं फैला रही है? सुनीता आरन।
संदीप सिंह है जो कि कल्याण सिंह जी के ग्रैंडसन है, बट कल्याण सिंह जी के बेटे भी एक क्लेमेंट रहे हैं बहुत टाइम से, और एक आपके लालजी टंडन, जो लालजी टंडन इज नॉट वेरी एक्टिव इन पॉलिटिक्स, इस समय वो बहुत ज्यादा बीजेपी राजनीति में बहुत एक्टिव नहीं है। अगर आपको याद हो पहले भी उन्होंने कहा था कि एक फैमिली के एक ही जने को पोजिशन मिलेगी। अब राजनाथ सिंह की जब आप बात करते, जो योगी जी का एलिवेशन है, इट इज सीन एज इफ एक और राजपूत लीडर को यूपी में एक तरह से डेवलप करने का काम हो रहा है एज अगेंस्ट राजनाथ सिंह जी। देन राजनाथ सिंह जी इज ऑलरेडी होल्डिंग अ पोजीशन। कल्याण सिंह के केस में कल्याण सिंह इज अ गवर्नर, ही इज नॉट इन एक्टिव पॉलिटिक्स, सो एक ये जो चल रहा है इनकी पार्टी में कि एक ही फैमिली मेंबर को पोजीशन मिलेगी, वन फैमिली वन पोस्ट का इन लोगों का एक फॉर्मूला है।
भाजपा ने टिकट बांटते वक्त भले एक भी मुसलमान को टिकट ना दिया हो, मोहसिन रजा टीम योगी का एकमात्र मुस्लिम चेहरा है, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह देने की क्या वजह हो सकती है? लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी कहते हैं,
देखिए सबसे बड़ा कारण मोहसिन रजा को लेने का यह है कि ये आलोचना हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था और एक भी उनके 325 में मुस्लिम विधायक नहीं है। दूसरी, चूंकि कैंपेन में बहुत सारी बातें बीजेपी ने ऐसी कही जिससे लगता था कि वो मुस्लिम विरोधी हैं, तो उस आलोचना से बचने के लिए उन्होंने एक मुस्लिम को अपने सरकार में लिया है। हालांकि वो शिया समुदाय से आते हैं जो पहले से ही माना जाता है कि बीजेपी को वोट भी देते रहे हैं और बीजेपी के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहा है शिया समुदाय के लोगों का।
इस मंत्रिमंडल में दूसरी पार्टियों से कूदकर भाजपा में आए लोगों की भी भारी संख्या है। बसपा से आए स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, ब्रजेश पाठक और लक्ष्मी नारायण चौधरी सभी को कुर्सी दी गई है। ऐसा करके भाजपा क्या संदेश दे रही है? रामदत्त त्रिपाठी,
तो एक तरह से वो विपक्षी पार्टियों को कमजोर करने की भी एक रणनीति है कि सब जगह से तोड़ तोड़ करके लोगों को लाना और अपने में समाहित करना, और जाहिर है कि इनमें विचारधारा का कोई अब संकट नहीं है, लोग बड़ी आसानी से खप जाते हैं।
कैबिनेट में 5 महिलाओं को जगह दी गई है जिनमें रीता भगोड़ा जोशी, गुलाब देवी, स्वाति सिंह, अनुपमा जायसवाल और अर्चना पांडे शामिल हैं। सरकार में महिलाओं की संख्या पर सुनीता आर्यन कहती हैं,
यस इट्स अ वेरी गुड नंबर एंड आई होप 44 में 5, मैं तो बहुत ज्यादा नहीं समझती हूँ, बहुत कम समझती हूँ, बट उसमें कुछ अच्छे नाम है। रीता भगोड़ा जी एक्सपीरियंस्ड है, स्वाति सिंह बहुत ही कुछ ही समय में उभर के आई हैं।
मंत्रिमंडल में प्रदेश की राजधानी लखनऊ और पश्चिमी हिस्से को खासी तरजीह दी गई है, लेकिन बुंदेलखंड के प्रतिनिधित्व में कमी पर लोग सवाल उठा रहे हैं। मंत्रियों को अभी विभाग अलॉट नहीं किए गए हैं। विनीत खरे, BBC दिल्ली।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5885, 7600, 9740, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आज सोमवार है और आज के दिन आपको इंतजार रहता है अपनी चिट्ठियों का। आपके पत्रों के साथ हैं राजेश जोशी और राखी शर्मा।
आपकी राय, नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का। और आज मेरे साथ हैं मेरी नई कुलीग, इनका नाम है
राखी शर्मा
जी। राखी शर्मा का भी नमस्कार। राखी शर्मा को आपने स्पोर्ट्स में सुना होगा और दूसरी खबरों में, लेकिन चिट्ठियां शायद आप पहली बार पढ़ रही हैं।
जी तो
पहली चिट्ठी क्या है?
जी पहली चिट्ठी है अमन श्रीवास्तव, जिन्होंने समीर आत्मज मिश्र को प्रणाम लिखा है और साथ ही कहा है कि योगी आदित्यनाथ के साथ उनका इंटरव्यू सुनकर थोड़े से डर गए थे वो, कि कहीं उनके धारदार सवाल सुनकर वो उग्र ना हो जाए,
योगी जी उग्र ना हो जाए।
बिल्कुल
जी, रविवार को हमने ये इंटरव्यू चलाया था और समीर आत्मज मिश्र, जैसा कि आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, आजकल गोरखपुर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन अमन श्रीवास्तव, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक पत्रकार का काम है, धर्म है कि वो जिनसे इंटरव्यू करते हैं उनसे तीखे धारदार सवाल ही किए जाते हैं, उनको अपनी बात कहने का पूरा मौका मिले और बात सामने आ जाए।
दूसरी चिट्ठी ले लेते हैं। दोहरी घाट मऊ उत्तर प्रदेश से प्रशांत कुमार राजभर लिखते हैं, इंडिया बोल विवेचना और दुनिया जहान कार्यक्रम लाजवाब हैं। लिखते हैं, मैं गरीब हूं पर मेरे पास एक रेडियो है और आपके कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं, अब जल्द ही नेट पर भी सुनने लगूंगा।
वाह प्रशांत भाई, आप बिल्कुल गरीब नहीं है, आप BBC के कार्यक्रम सुनते हैं, आप दीन दुनिया से बहुत वाकिफ हैं, जानते हैं कि क्या हो रहा दुनिया में, अपने आप को कतई गरीब ना कहें, आप हमारे साथी हैं, आप हमारे श्रोता हैं और ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है।
और त्रिकुटा नगर जम्मू से प्रमोद सभरवाल लिखते हैं, 18 मार्च को सुनील गावस्कर पर रेहान फजल की विवेचना ने दिल मोह लिया, कभी आप हमारे घर के पते पर समय सारणी भेजा करते थे, क्या वो सिलसिला फिर से शुरू हो सकता है?
समय सारणी भेजने का जो सिलसिला था वो आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, तब न तो इंटरनेट था, तब न सोशल मीडिया था और न ही bbchindi.com था, तो अब तो शायद उसकी जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट पर हमारे सभी कार्यक्रम सुन सकते हैं, 2 कार्यक्रम हैं और उनको सुबह शाम आप सुन सकते हैं, आपको ज्यादातर मालूम ही है, बाकी BBC हिंदी वेबसाइट पर अगर आप आएंगे तो और मालूमात आपको हासिल हो सकती हैं।
और ये चिट्ठी भी रेहान फजल जी के लिए
हाँ,
है।
रेहान फजल जी की विवेचना की तारीफ में बहुत सारी चिट्ठियां आई हैं।
सुनील गावस्कर पर उन्होंने लिखा है कि आखिर कहां कहां से वो ये चुनकर लाते हैं। सबसे पहले मैं नाम
यही
बता दूं,
तो रहस्य है।
विकास शर्मा है, ये कुरुक्षेत्र से पूछते हैं, जो कॉमेंट्री उन्होंने सुनवाई आखिर वो कहाँ से तलाशी होगी और फिर उन अंशों को प्रोग्राम के लिए उठाया होगा। बहुत बहुत आभार इतनी शानदार प्रस्तुति के लिए।
जी, ये रेहान फजल तक आपकी प्रशंसा पहुंचा दी गई है, बल्कि रेहान ही कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, आप उनकी आवाज तो सुन ही रहे हैं इस समय। अपनी तारीफ की अब वो क्या बात कहेंगे यह रहस्य तो आपको बताने से रहे कि वो कहां से चीजें जुटाते हैं हमें नहीं बताते हैं।
और अगली चिट्ठी भी रेहान जी के लिए, जैसलमेर राजस्थान से बरकत अली ने लिखा है, अभी अभी रेहान फजल की विवेचना सुनी, मजा आ गया।
बहुत बहुत धन्यवाद बरकत अली साहब, सुनते रहिए।
अरुण कुमार छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से लिखते हैं, मैं पेशे से स्टेशन मास्टर हूँ, मूलतः नालंदा बिहार का रहने वाला हूँ। बीबीसी के संवाददाताओं ने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को बड़ी कुशलता से और निष्पक्षता से प्रस्तुत किया और इसके लिए आप लोग प्रशंसा के हकदार हैं। एक शिकायत है इन्हें, 16 मार्च को दिन भर कार्यक्रम में अपूर्व कृष्ण बोल गए, आज है 9 मार्च।
हाँ, इतनी गलती तो कभी कभी हो जाती है, वो मुझे भी याद है और हमारे पास फोन भी आया था हमारे एक श्रोता का, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसी तरह लिखते रहिएगा।
और इन्होंने बयां भी किया है कि गुलाब का अगर बगीचा हो उसमें आप सैर करेंगे तो एक आध कांटा चुभता है तो वो अच्छा भी लगता है।
जी, कभी कभी कांटे भी होते हैं और हम ये नहीं कहते हैं कि हम सिर्फ आपको गुलाब देते हैं, कई बार कांटे भी हैं और इन्हीं कांटों का जिक्र आने वाली चिट्ठियों में भी होने वाला है। मुझे लगता है अगर आप पढ़ेंगी तो इन्हीं कांटों का जिक्र हुआ है।
इलाहाबाद से अनिल शुक्ल की चिट्ठी हमने पिछले हफ्ते शामिल की थी, इस बार फिर उन्होंने शिकायत की है।
यानी पिछले हफ्ते भी शिकायत की थी, इस बार भी क्या कह रहे हैं शुक्ला जी?
जिन विशेषज्ञों को इस कार्यक्रम में हम बुलाते हैं वो एक तरफा और गलत बात कहते हैं। उन्होंने अंबिकानंद सहाय का उदाहरण दिया है और कहा है कि उन्होंने बीजेपी की हार की भविष्यवाणी की थी। इन्होंने आगे भारत पाकिस्तान मैच पर विवेचना प्रस्तुत करने के लिए रेहान फजल की हालांकि भरपूर तारीफ भी की है।
अनिल शुक्ल साहब, आप हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं, बस मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि हमारे कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता है, हमारे कार्यक्रमों में न्यूज एंड करंट अफेयर्स दुनिया भर की खबरें होती हैं, कभी कभी उन पर भी टिप्पणियां किया कीजिए। रही बात अंबिकानंद सहाय को या ऐसे लोगों को बुलाने की है जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं या सही से उन्होंने चुनाव का आकलन नहीं किया, तो हम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राकेश सिन्हा को भी बुलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी बुलाते हैं। अगर हमारी वेबसाइट आप पढ़ें तो उसमें हर राजनीतिक रंग का आपको एक जायजा मिल जाएगा। बस यह है कि थोड़ा सा आप ये देखने की कोशिश करें कि एक न्यूज एंड करंट अफेयर्स प्रोग्राम होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी को हमने बुलाया है तो उनको उनकी बात कहने की इजाजत हम दें, हम सेंसर नहीं करते हैं, चाहे वो राकेश सिन्हा हो चाहे अंबिकानंद सहाय हो। मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, आप इसी तरह सुनते रहें और अपनी राय से हमें वाकिफ कराते रहें, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि अपनी राय आप बाकी जो दूसरी चीजें होती हैं, दूसरे कार्यक्रम होते हैं, उन पर भी हमें लिख के भेजें तो बहुत अच्छा लगेगा। अब मुझे लगता है कि अब इसके बाद समय नहीं बचा है
जी।
तो चलते चलते मैं श्रोताओं को पता बता देता हूँ, बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहें तो है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार,
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। भारत प्रशासित कश्मीर में दशकों से जारी राजनीतिक कश्मकश और राज्य में सेना की तैनाती का वहां की संस्कृति, खासकर कला और गीत संगीत पर क्या असर पड़ा है, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दिल्ली के 2 फिल्मकारों ने वहां जाकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो हाल में दिल्ली में दिखाई गई। कश्मीर में गाए जाने वाले बानवुन से लेकर हाल में लोकप्रिय हुए हिप हॉप में ऐसा क्या है जो इस देश के बाकी हिस्सों से अलग करता है? विशेष रिपोर्ट के साथ दिव्या आर्य।
हमारी फिल्म सोर्स के जरिए आर्ट और पॉलिटिक्स का जो एक बहुत गहरा रिश्ता रहा है कश्मीर में, उस ट्रेडिशन को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारे सूत्रधार हैं ज़रीफ़ साहब, जिन्होंने हिस्टोरिकल लडीशा या फिर ऐसे फोक फॉर्म्स इकट्ठे किए हैं जो लोगों की लिव्ड हिस्ट्री, उन्होंने कैसे जिया उस हिस्ट्री को फ्रॉम द टाइम ऑफ अकबर अप अंटिल 1947, औरतों के वनवन, इन सबको गैदर करके एक हिस्ट्री का एक नया रूप हमारे सामने रखा जो हमने आज तक देखा नहीं है, किताबों में पढ़ा नहीं है।
Thank you. लड़ी शाह जो कलमकार होते हैं वो तो लिखते हैं, मगर इस तरीके से लिखते हैं कोई उन पर गिरफ्त ना हो, कोई सरकार उनके ऊपर ये नहीं कहे ये बागी हैं, इन्होंने बगावत शुरू की, ऐसे अल्फाज में जिसको स्टायर कहते हैं।
फिल्म के एक सीन में ये थे कवि जरीफ अहमद जरीफ। सार्वनिक कौर और तुषार माधव की फिल्म सोज अ बैलेड ऑफ मेलेडीज में चाहे सूत्रधार जरीफ हो या अन्य कलाकार, कला और खौफ के रिश्ते की बात हर कोई करता है। इतिहास में झांकें तो भारत के इस उत्तरी हिस्से में सूफियाना मौसीकी का असर मिलता है, लेकिन फिल्म दिखाती है कि समय के साथ लोगों ने मौसीकी में अपनी पसंद भी बदल ली है।
इस्लाम में ये म्यूजिक शूजिक का मामला जो है ये अलव नहीं करता है, मगर यहाँ का जो माहौल है, यहाँ जब मीर सईद अली हमदानी साहब आए जिनके जरिए से यहाँ का मास कन्वर्शन हो गई, उन्होंने अपने साथ वो सूफियाना मिजाज का जो गाने बजाने का उनका ढंग रंग था उसी को सूफियाना मूसीकी कहते थे। मैं क्या सूफियाना मूसीकी के पैगाम इसको सुनाऊंगा, चासरा रहे है वहाँ शैली की और सूफियाना मूसीकी अमन सलामती और इंसानियत का सौगात है।
MC Cash on the vocals. I pledge my allegiance to my soil.
MC Cash को भारत प्रशासित कश्मीर में हिप हॉप लाने और उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है।
कश्मीर को जिस तरीके का जन्नत या पैराडाइज कहा जाता है, हम लोगों ने जिन आर्टिस्ट को अपने फिल्म में फीचर किया जैसे कि MC Cash, वो इस नोशन से, वो इस जन्नत की डेफिनेशन कश्मीर से दूर लेना ले जाना चाहते हैं। हिप हॉप एक प्रोटेस्ट का ऐसा जरिया है जहाँ पे उनकी नीयत ये नहीं है कि उनका गाना कितना अच्छा है, उनकी नीयत ये है कि उनकी कहानियाँ जो हैं, लोगों की कहानियाँ जो हैं, लोगों का इतिहास और हिस्ट्री जो है, उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं, वो एक वाइडर ऑडियंस तक पहुँचे, उसके लिए वो अंग्रेजी का जरिया इस्तेमाल करते हैं।
I haven't made a song on anything normal, you know, everything is conflict, 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 you know.
फिल्म में वो बताते हैं कि वो सिर्फ संघर्ष के बारे में लिखते हैं और लाख कोशिश के बावजूद नदियों, वादियों, खूबसूरती के बारे में उनका कलम कुछ नहीं कह पाता। फिल्मकार तुषार माधव एक और कलाकार का उदाहरण देते हैं।
तो आज की तारीख में जो कश्मीरी आर्टिस्ट्स हम मिलते हैं, वो लोग के लिए बंकर्स, बार्ब्ड वायर, AK-47 बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव्स बन चुके हैं जो अपनी आर्ट में वो पोर्ट्रे करते हैं। जैसा कि हमारे एक आर्टिस्ट शौकत काटजू बोलते हैं कि उन्होंने एक ओरिजिनल बंकर बनाया अपने आर्ट इंस्टॉलेशन के लिए और उसके थ्रू ये दिखाना चाहा कि कैसे कश्मीर का लैंडस्केप रीडिफाइन हो चुका है और वहाँ पे बंकर, AK-47, बार्ब्ड वायर, ये सब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं, बिसाइड्स वादियाँ, बिसाइड्स वहाँ की नदियाँ और झीलें।
द होल वर्ल्ड हैज गॉन वे बियॉन्ड इन म्यूजिक एंड वी लैग बिहाइंड ऑलमोस्ट 100 इयर्स। अभी भी सारंग को बनाने में 6 महीने लगते हैं, हम लोग 6 महीने उसको लगते थे आज से 600 साल पहले भी, टाइम फ्रेम के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, दे हैवंट इनोवेटेड, दे हैवंट डन एनी प्रॉपर इनोवेशंस। और रबाब को भी अगर हम देखें, जो रबाब आजकल वही नोट देते हैं टननन टननन टननन, जो आज से 200 साल पहले निकलता था टननन टननन टननन।
फिल्म आईना दिखाती है तो कई सवाल भी उठाती है। फिल्म में स्थानीय पत्रकार अनीस जरगर की ये बात फिल्म खत्म होने के बाद भी साथ रह जाती है, क्योंकि जवाब ना सीधे हैं ना आसान।
These are the problems that lie in our society in every sphere, not just music. हमारा खाना भी वैसा ही है। Similarly, political scene पे भी अगर हम देखें, तो we still हम वही 200 साल पुरानी politics इस्तेमाल करते हैं। 20 साल पहले जो था, आज भी वही चलता है। So we have become status quoists.
कश्मीर की राजनीतिक गहमागहमी का वहाँ की कला और संस्कृति पर असर। और अब क्रिकेट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रांची में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। मैच के आखिरी दिन का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 204 रन बनाते हुए भारत को जीत का स्वाद नहीं चखने दिया। चेतेश्वर पुजारा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। वैभव दीवान की रिपोर्ट।
बीबीसी खेल समाचार के साथ मैं हूं वैभव दीवान। रांची में खेला गया भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच हुआ ड्रॉ। टेस्ट मैच के पांचवें दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरी पारी में 152 रनों से पीछे थी। ऑस्ट्रेलियन टीम ने आज सुबह अपने कल के स्कोर 23 रन पर 2 विकेट से आज खेलना आगे शुरू किया। सुबह के सेशन में ऑस्ट्रेलिया की 2 विकेटें जल्द गिरी, जिसके बाद आए बल्लेबाज पीटर हैंस्कॉम्ब और शॉन मार्श ने निर्णायक भूमिका निभाई और मैच को संभालने की जिम्मेवारी ली। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 124 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलिया को हार के खतरे से बचाया। इससे पहले कप्तान स्टीव स्मिथ 21 और मैट रेनशॉ 15 रन बनाकर सस्ते में आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया के लिए मोर्चा संभालने वाले हैंस्कॉम्ब ने 200 गेंद खेलकर अपना विकेट नहीं गंवाया और स्कोर को दिन का खेल और टेस्ट मैच खत्म होने तक 204 पर 6 तक पहुंचाया। मैच के बाद बीबीसी हिंदी ने बात की पूर्व भारतीय क्रिकेटर विजय दहिया से और उन्होंने आज हुए भारत ऑस्ट्रेलिया के ड्रॉ को ऐसे आंका।
मैं तो इस ड्रॉ को ऑस्ट्रेलिया की जीत आंकूंगा सही मायनों में। अगर 4 खिलाड़ी, कल 2 खिलाड़ी थे और आज सुबह जो सबसे बड़ा विकेट लग रहा था वो सबसे बड़ा विकेट था स्मिथ का, वो मिलने के बाद अगर आप देखें तो एक तरीके से हम फिर अगले 2 सेशन में कोई विकेट लेके नहीं ले नहीं पाए। आखिरी में आकर जो विकेट मिला उसकी नहीं, तब तक तो मैच खत्म ही हो चुका था। तो एक तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया की जीत माने इसे, क्योंकि जब आप इस तरीके से मेहनत करके अपने आप को बचाते हैं ना, तो वो आपके आत्मविश्वास के लिए बहुत अहम हो जाता है। तो भारतीय टीम जब अब पहुंचेगी धर्मशाला, वहां पर मन में ये आएगा एक विचार कि यहाँ पर ऐसी विकेट हो सकती है, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें ऑस्ट्रेलियाई जो गेंदबाजी है वो थोड़ी से उनका मजबूत पहलू हो सकता है। उनकी बैटिंग कमजोर थी इस दौरे पे, लेकिन उनकी बैटिंग ने आज कमाल का डिसिप्लिन दिखाया।
मैच में मैन ऑफ द मैच चेतेश्वर पुजारा रहे, जिन्होंने पहली पारी में भारत की तरफ से शानदार 202 रन बनाए थे। आज खेल में लंच से पहले एक बार ऐसा लगा था कि भारत जल्द ऑस्ट्रेलिया को आउट कर देगा। रविंद्र जडेजा की फिरकी गेंदबाजी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परख रही थी, लेकिन उस समय दबाव बनाने के लिए कोहली ने दूसरे छोर से अश्विन को बॉल नहीं थमाई। इस बात पर विराट कोहली से मैच के बाद हुआ एक सवाल, जिस पर उन्होंने कहा,
We wanted to give जडेजा a longer go because,
हमने जडेजा को ज्यादा गेंदबाजी इसलिए दी क्योंकि वो पिच के रफ हिस्सों पर लगातार बॉल को टप्पा खिला रहे थे, जिससे गेंद बल्लेबाजों को तंग कर पा रही थी और उन्हें अटैक कर रही थी। दरअसल ये बात जानने वाली है कि किस एंड से कौन सा गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है। कई बार ऐसा भी हुआ है जब अश्विन ने बाकी बॉलर से ज्यादा बॉलिंग की है, तो ये रोल बदलते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
भारत के लिए एक बार फिर रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन गेंदबाजी की और सिर्फ 54 रन देकर 4 विकेट लिए। अब भारत ऑस्ट्रेलिया की श्रृंखला है 1-1 से बराबरी पर और चौथा टेस्ट मैच 25 मार्च से धर्मशाला में खेला जाएगा, जो पहली बार किसी टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा। कहा जा सकता है कि अगला टेस्ट मैच इस सीरीज का फाइनल टेस्ट मैच होगा। फिलहाल बीबीसी खेल समाचार में इतना ही।
रांची में भारत और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच ड्रॉ। और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने आज कार्यभार संभाल लिया। प्रदेश सरकार ने लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया है। सरकार का कहना है कि अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्रिटेन सरकार ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने की प्रक्रिया शुरू करने की तारीख तय कर दी है। प्रधानमंत्री टेरेसा मे के प्रवक्ता ने बताया कि वो इसे लेकर बने अनुच्छेद 50 को लागू करने की शुरुआत 29 मार्च को करेंगी। सीरिया से मिली रिपोर्टों के मुताबिक सरकार के समर्थन वाली सेना ने राजधानी दमिश्क के पूर्वी हिस्से में 30 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। दमिश्क पर कल विद्रोहियों ने अचानक हमला कर दिया था। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने सरकार की आर्थिक नीति की आलोचना की है। दक्षिण कोरिया ने विश्व व्यापार संगठन के सामने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को लेकर चीन के रुख पर चिंता जाहिर की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन ने बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की है। चीन की राजधानी बीजिंग के एक धार्मिक स्थल पर सार्वजनिक शौचालयों में चेहरे को पहचानने वाले कैमरे लगाए गए हैं। इसका मकसद टॉयलेट पेपर की चोरी रोकना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रांची में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच बेनतीजा खत्म हो गया। पहली पारी में 451 रन बनाने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 204 रन बनाए। भारतीय टीम को एक ही बार बल्लेबाजी का मौका मिला। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।